दोस्तों कहानी में आगे बहुत एक्साइटमेंट है और कहते हैं ना पहले प्यार की पहली चिट्ठी, कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था सहज को इस चिट्ठी के पढ़ने के बाद। सहज ने लगातार 4 बार पूरी चिट्ठी पढ़ी, उसका मन ही नहीं भर रहा था। पहली बार सांझ ने अपने मन की बात जो कही थी, जी कर रहा था उड़कर उसके पास पहुंच जाए, पर यह सिर्फ कल्पना थी, हकीकत नहीं। चिट्ठी सीने के ऊपर रखकर सोचता रहा और सोचते सोचते न जाने कब सो गया। धड़ाक से दरवाजे पर पैर लगने की आवाज से नींद खुली। हॉस्टल में यह आम बात थी दरवाजे पर पैर मारकर दोस्तों को बुलाने की। एक सशक्त संदेश और संकेत होता था कि कोई बुला रहा है, सोए भी हो तो उठो और दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला तो उन्हीं दोस्तों को सामने देखा जिन्होंने वह सब पूछना शुरू कर दिया जो वह सोच सकते थे। प्रश्न पर प्रश्न समझाना मुश्किल था, क्योंकि समझने के लिए उस मनस्थिति में आना बहुत जरूरी था। काफी देर तक प्रश्न और उत्तर का दौर चलता रहा। दोस्त प्रश्न पे प्रश्न पूछते रहे और सहज उनका उत्तर देता रहा। दोपहर से शाम हो गई। जबरदस्ती उठकर उन चर्चाओं पर रोक लगाया सहज ने। सांझ की चिट्ठी से ये तो बहुत स्पष्ट था कि उसके मन में क्या चल रहा था, और साथ में यह भी कि परिवार और समाज का कितना डर है उसमें। सामाजिक परिवेश की बात करें तो सांझ का प्यार तो मन की पवित्रता से था, पर उसका डर समाज और परिवार के बंदिशों और सोच के हिसाब से था। वह गलत नहीं थी, पर सही बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। सहज समझ तो रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी यह डर था, क्योंकि उसके पिताजी भी एक संभ्रांत समाज की मानसिकता वाले लोगों में से थे। दोनों तरफ लगभग एक ही कहानी थी, दोनों तरफ डर भी एक जैसा ही था। कारण क्या है इसका पता न सहज को था और न सांझ को। दोनों बस चले जा रहे थे एक अनजान मंजिल की ओर। सहज ने अपने मन की बात अपने दोस्त अमन से शेयर की। दोनों ने समय और उम्र की समझ के हिसाब से सलाह मशवरा किया। आगे की कोई स्पष्ट रूपरेखा तो नहीं मिली, पर अगला कदम अवश्य तय कर लिया गया। इस बार अब सहज की बारी थी। इतना पता था कि यदि सप्ताह के दिनों में मिलना है तो कहां जाना है। बुधवार को क्लासेस कम थी और प्रैक्टिकल भी नहीं थे। सहज ने एक क्लास बंक मारी और चल पड़ा सांझ से मिलने। इस बार उसके घर पर नहीं, बल्कि उस स्कूल में जहां वह पढ़ाती थी। सिर्फ स्कूल का नाम पता था और सिर्फ स्कूल के नाम से ही स्कूल ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उस एरिया में स्कूल भी बहुत नहीं थे। इसलिए पूछ पूछ कर एक घंटे की मेहनत के बाद सहज उस स्कूल में भी पहुंच गया। आखिर स्कूल भी एक संस्था होती है, छोटी या बड़ी, वहां के भी नियम होते हैं। ऐसे कोई कैसे भी किसी से मिल सकता है, पर हिम्मत की कोई कमी थी नहीं उसमें। स्कूल में प्रवेश कर रिसेप्शन पर आकर बहुत आत्मविश्वास से उसने रिसेप्शनिस्ट मैडम से कहा, हाय, आई एम सहज, अ फ्रेंड ऑफ सांझ, प्लीज इन्फॉर्म दैट आई एम हियर टू मीट हर। पहनावे और बातचीत के तरीके से रिसेप्शन वाली मैडम प्रतिरोध नहीं कर सकी। All right, sir. Please be seated. I'll call her. यह कहकर अपनी जगह से उठकर रिसेप्शन वाली मैडम क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। 2 मिनट के अंदर ही वापस आकर बोली, सर, आई हैव इन्फॉर्म्ड हर, शी इज जस्ट कमिंग, और मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। लगभग 5 मिनट के इंतजार के बाद थोड़ी घबराई हुई सी सांझ रिसेप्शन पर आई। चेहरे पर खुशी और डर दोनों के मिश्रित भाव थे। हाय सहज, प्लीज ज्वाइन मी इन द मीटिंग रूम, कहकर प्रोफेशनल तरीके से उसे मीटिंग रूम में ले गई। शीशे के दरवाजे से रिसेप्शन साफ दिखाई दे रहा था, पर आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सहज, पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? सांझ ने कहा। अरे, तुमसे मिलना था इसलिए आए हैं। एडमिशन थोड़े ही करवाना है बच्चों के स्कूल में मुझे, हंसते हुए सहज ने कहा। देखो, मेरा भी मन है तुम्हारे साथ समय बिताने का, पर यह जगह ठीक नहीं। स्कूल वाले पता नहीं क्या सोचेंगे, सांझ ने कहा। अरे क्या फर्क पड़ता है सांझ, सहज ने थोड़ा ताकत लगाकर बोला। अरे बुद्धू, फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल मेरे पापा के जानकार हैं, उन तक बात पहुंची तो हम क्या बताएंगे कि कौन मिलने आया था हमसे, सांझ ने उसे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा। हाँ, बात तो ठीक है तुम्हारी, पर अब तुम बताओ कि हम तुमसे कहाँ मिले। घर में बात हो नहीं पाती, स्कूल भी सेफ नहीं है, तुम बाहर आती नहीं, तुम ही बताओ ना हम क्या करें, सहज ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, रुको सहज, हम कुछ उपाय ढूंढते हैं, हम तुमको चिट्ठी भेजेंगे, अब जाओ यहाँ से, कहते हुए उसने सहज को मानो वहां से निकाल दिया। सहज ने कहा, ठीक है भाई, जाता हूँ, पर एक फोन नंबर भी है हमारे हॉस्टल के बाहर टेलीफोन बूथ का, तुम चाहो तो वहां पे मैसेज दे सकती हो मेरा नाम बता कर। और ये कहकर सहज ने एक पेपर पर नंबर लिखकर सांझ को पकड़ा दिया और वापसी के लिए निकल पड़ा। मिलने की तो बहुत इच्छा थी, पर ज्यादा समय ना दे पाने के कारण मन संतुष्ट नहीं हुआ था। वो भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर समय ही नहीं मिला। मन की बातें मन में ही रह गई, अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त ही नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं मन में कुंठा घर करती जा रही थी, जिससे दोनों निकलना चाह रहे थे पर कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। कैसे करना है, सब कुछ अनिश्चित सा महसूस हो रहा था। समय के पहियों के साथ बस दोनों चले जा रहे थे। बैच के ही एक लड़की काम्या पर अमन का दिल भी आ गया था। उसने भी अपने मन की बात सहज को बताई। सहज की मध्यस्थता से दोनों मिले, पर काम्या ने अपने परिवार और समाज की दुहाई देते हुए कड़े शब्दों में असहमति जताई और बात वहीं खत्म करने को बोल दिया। दोनों दोस्त अपनी व्यथा एक दूसरे से कहते और पढ़ाई पर ध्यान देने का एक दूसरे को दिलासा देते। पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक और गैर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में हो चुकी थी। एक दूसरे के बदले सारे निर्णय लेने की भी छूट थी दोनों को। क्लास के बाद का सारा समय दोनों दोस्तों का साथ ही बीतता था। रैगिंग अभी खत्म नहीं हुई थी, पर उसी के दौरान सहज की काफी सीनियरों से अच्छी संगति हो गई थी। वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन की जिम्मेदारी सहज ने अपने कंधों पर ली। छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए और इस उत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई। बैच के सारे दोस्तों ने मिलकर इसका बीड़ा उठाया और तैयारियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार कर ली गई। सहज तो हमेशा ही तीसरी दुनिया में रहता था, अब तो वो सांझ की फोटो हमेशा अपने शर्ट की ऊपरी पॉकेट में रखता। कभी कोई दोस्त उसे उसकी सफलता और कर्मठता का कारण और श्रेय पूछता तो बड़ी सहजता से फोटो निकालकर दिखा देता। उसके दोस्त भी उसकी सरलता के कायल थे। वॉइजनेस ग्रुप हो या पियांग ग्रुप, दोनों में उसकी छवि बराबर थी और वह सभी ग्रुप का बराबर का हिस्सेदार था। सब कुछ जानने के बावजूद काम्या उसके प्रति काफी आकर्षित होती जा रही थी। नारी मनोविज्ञान के अनुसार नारी के आकर्षण का कारण होता है पुरुष की प्रसिद्धि। सहज अभी तक पूरे कॉलेज में पढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम और गैर सांस्कृतिक कार्यक्रम सब मिला करके अपने व्यवहार से काफी प्रसिद्ध हो चुका था। किसी भी लड़की का उसके प्रति आकर्षण कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। काम्या को तो सांझ के बारे में भी पता था, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। कभी किसी नोट्स के बहाने तो कभी अमन के बारे में जानने के क्रम में उससे मिलने की कोशिश करती। सहज उसकी सारी बातें अमन से बताता और उन सब की जिंदगी बस बढ़ती जा रही थी। बैच की दूसरी लड़की थी राशि, पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और एक अच्छी दोस्त थी सहज की। कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं होने के कारण सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। सहज और सांझ की कहानी तो पूरे कॉलेज में फेमस हो ही गई थी। इधर काम्या के आकर्षण की बात भी सहज ने राशि को बता रखी थी, फिर भी काम्या के कुछ कारनामे मुश्किलें बढ़ा रही थी सहज की। कॉलेज परिसर में, कॉलेज कैंपस में एक लड़का और एक लड़की का एक साथ घूमना उस समय किसी अपराध से कम नहीं था। अकारण ही शिक्षकों के चहेते सहज को महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है उसके साथ, पर वो अपनी सफाई नहीं देना चाहता था। उसे तो यह लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्त को उसकी प्यार की मंजिल तक पहुंचाने में मदद कर रहा था, पर हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत यह थी कि काम्या पता नहीं किन कारणों से उन दोनों दोस्तों की दोस्ती तोड़ना चाहती थी। उचित कारण का तो पता नहीं, पर बातों बातों में उसने सहज को चैलेंज भी कर दिया था कि वह उन दोनों दोस्तों की दोस्ती तोड़ कर रहेगी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ दोस्ती, समाज आदि को संभालने में सहज का वक्त निकलता जा रहा था। उसे सांझ की चिट्ठी या फोन का इंतजार रहने लगा। आते जाते फोन बूथ पर जाकर पूछता रहता, भैया मेरे लिए कोई फोन मैसेज आया है क्या? नहीं सर, बैजनाथ भैया मुस्कुराते हुए जवाब देते। मुंह लटकाकर वापस आ जाता था वो। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। क्लास के बाद का समय दोस्तों में बीतता था, काफी दोस्त बन गए थे। वैसे तो पूरा बैच ही उसका दोस्त था, पर उसमें ब्रजेश, अतुल, संजय, अरुण, अरिंदम इत्यादि काफी घनिष्ठ थे। समय बीतते देर नहीं लगती थी दोस्तों के बीच। किसी की कोई आपत्ति या शिकायत नहीं थी सहज के व्यवहार से, क्योंकि वह बैलेंस बनाकर रखता था। इसी बीच सांझ की चिट्ठी आई फिर से। फिर से वही खुशी, वही रौनक लौट आई थी सहज के चेहरे पे। चिट्ठी में क्या था ये बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। कहानी के इस पड़ाव में आज बस इतना ही।